नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में आज हम एक ऐसे नाम की बात कर रहे हैं जो खेल की दुनिया से कहीं आगे निकल गया है, एक आइकन।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो मतलब जीत का, जुनून का और शायद सबसे बढ़कर उस कभी ना हारने वाले जज्बे का दूसरा नाम है,
माइकल जॉर्डन। और हम सिर्फ उनके खेल की नहीं बल्कि उनकी उस सोच की गहराई में उतरेंगे जो उनकी किताब आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग में झलकती है, कि मैं कोशिश न करना स्वीकार नहीं कर सकता।
सही कहा, क्योंकि देखिए जॉर्डन को महान सिर्फ वो 6 NBA चैंपियनशिप या 5 MVP अवार्ड नहीं बनाते, वो तो हैं ही, जाहिर है। लेकिन असली कहानी तो उनके दिमाग की है, उनके उस मेंटल फोर्टिट्यूड की है जिसने उन्हें न सिर्फ बास्केटबॉल में टॉप पर पहुंचाया
बल्कि बिजनेस में भी। जॉर्डन ब्रांड, टीम ओनरशिप, वो सब भी तो है।
बिल्कुल, और इसीलिए ये चर्चा आज भी इतनी जरूरी है। ये सिर्फ एक एथलीट की कहानी नहीं है।
नहीं, ये कहानी है हार को कैसे आप अपनी ताकत बनाते हैं, डर से कैसे निपटते हैं, संघर्ष को कैसे देखते हैं। हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना, अपने अपने गोल्स के लिए। तो सवाल ये है कि इस कभी हार न मानने वाली सोच से हम क्या सीख सकते हैं, ये महानता आती कहां से है।
और देखिए, जॉर्डन का जवाब कोई किस्मत या गॉड गिफ्टेड टैलेंट पर नहीं टिका।
नहीं,
अच्छा, उनका पूरा फलसफा है लगातार कोशिश, गिरो उठो और सबसे जरूरी, फेलियर को एक लेसन समझो, एक सीखने का मौका।
मतलब हार तब तक नहीं होती जब तक आप कोशिश करना न छोड़ दें।
एग्जैक्टली, जब तक आप मैदान में हैं आप हारे नहीं हैं।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा शुरू से देखते हैं।
जी,
कहां से ये सोच पनपी, वो शुरुआती साल कैसे थे?
जॉर्डन का जन्म तो ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था, पर उनकी परवरिश हुई नॉर्थ कैरोलिना में। उनके पेरेंट्स जेम्स और डिलोरस जॉर्डन बहुत मेहनती लोग थे और उन्होंने बचपन से ही माइकल और उनके भाई बहनों में वो वैल्यू डाली, कड़ी मेहनत करो और विनम्र रहो।
ये एक मजबूत नींव थी,
बहुत मजबूत। और फिर आया वो पहला बड़ा झटका जो शायद उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना,
हाई स्कूल टीम वाली बात।
हाँ।
जब उन्हें स्कूल की मेन बास्केटबॉल टीम वर्सिटी टीम से निकाल दिया गया, सोचिए जरा,
जिसे दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना था उसे स्कूल टीम में जगह नहीं मिली, ये तो कमाल है।
ये सिर्फ एक निराशा नहीं थी, ये उनके लिए एक तरह का फ्यूल बन गया। यहीं से वो जॉर्डन सामने आया जिसे हम जानते हैं।
मतलब
उन्होंने इस रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लिया, उन्होंने इसे एक सिग्नल समझा कि कहीं कमी है जिसे दूर करना है। और फिर शुरू हुई वो मेहनत, वो जबरदस्त मेहनत जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
उनका लक्ष्य सिर्फ टीम में वापस आना नहीं रह गया था फिर?
नहीं, उनका लक्ष्य था कि वो इतने अच्छे बन जाए कि उन्हें कोई नजरअंदाज कर ही ना सके, कभी नहीं।
वाह, तो उस हार ने ही असल में जीत की भूख जगा दी।
बिल्कुल, फिर कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। वहां उन्हें डीन स्मिथ जैसे कोच मिले।
बड़े नाम है वो भी कोचिंग में। हाँ, उन्होंने जॉर्डन को सिर्फ स्किल नहीं सिखाई बल्कि अनुशासन और टीमवर्क का असली मतलब समझाया, कि अकेले चमकने से टीम नहीं जीतती।
अच्छा,
लेकिन फिर जब वो NBA में आए शिकागो बुल्स के लिए, तो शुरुआती साल आसान नहीं थे।
हाँ, वो डिट्रॉइट पिस्टन्स वाली राइवलरी।
बिल्कुल, पिस्टन्स उन्हें प्लेऑफ्स में बार बार हरा रहे थे, वो बहुत फिजिकल टीम थी, बैड बॉयज कहते थे उन्हें।
हाँ,
और जॉर्डन पर बहुत प्रेशर था, मीडिया, फैंस सब देख रहे थे।
तो ये जो स्ट्रगल का दौर था, ये भी उतना ही जरूरी था उनकी कहानी में?
बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जॉर्डन इन हारों से टूटे नहीं, उन्होंने इनसे सीखा।
क्या सीखा?
उन्होंने अपनी गेम को एनालाइज किया, समझा कि पिस्टन्स उन्हें कैसे रोक रहे हैं, फिर उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम किया, अपनी गेम में और वैरायटी लाई। ये दिखाता है कि चैंपियन हार से कैसे सीखते हैं, वो हार को अंत नहीं मानते बल्कि एक फीडबैक मानते हैं।
ये वही बात आ गई, फेलियर ठीक है, कोशिश ना करना गलत है।
हाँ, यही उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, उन्हें ये हारें जरूरी लगीं, इनसे वो और मजबूत हुए।
और फिर वो दौर आया जिसका सब इंतजार कर रहे थे, शिकागो बुल्स, 6 चैंपियनशिप, 5 MVPs, ओलंपिक गोल्ड।
हाँ, वो उपलब्धियां तो मतलब इतिहास है, रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हैं।
लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी विरासत सिर्फ इन ट्रॉफियों में नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी असली लेगेसी, उनकी विरासत, वो चैंपियन माइंडसेट है, वो सोच है।
कैसी सोच, क्या क्या आता है उसमें?
उसमें आता है गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना, डर का सामना करना, उसे भगाना नहीं, फेलियर से सीखना, टीम के लिए खेलना और लीड करना बातों से नहीं, अपने एक्शन से।
अच्छा,
और यही सिद्धांत उन्होंने बाद में बिजनेस में भी लगाए। जॉर्डन ब्रांड आज कितना बड़ा है, टीम ओनर के तौर पर भी ये सोच ट्रांसफरेबल है।
तो इस सोच को, इस फलसफे को थोड़ा और समझते हैं, क्या है इसके मूल तत्व?
सबसे बड़ा, सबसे सेंट्रल आइडिया तो वही है जो किताब का टाइटल भी है, असफलता चलेगी पर कोशिश न करना नहीं चलेगा। मतलब आप हजार बार फेल हो सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर आपने डर के मारे या आलस की वजह से अपना बेस्ट दिया ही नहीं, वो असली फेलियर है।
गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है।
बिल्कुल सही, यही मूल मंत्र है।
ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या कोई स्टेप्स थे, कोई सिद्धांत थे जिन्हें वो फॉलो करते थे?
हाँ, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंडेड प्रिंसिपल्स थे, आदतें थी उनकी।
जैसे कि?
पहला, लक्ष्य, गोल्स। वो बड़े सपनों को छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले कदमों में तोड़ते थे।
अच्छा।
जैसे मैंने कहा, हाई स्कूल टीम से कटने के बाद उनका गोल एनबीए स्टार बनना नहीं था, पहला गोल था अगले साल टीम में जगह बनाना, फिर कॉलेज में अच्छा खेलना, फिर एनबीए में सिलेक्ट होना। हर छोटा कदम कॉन्फिडेंस देता था और अगले कदम के लिए तैयार करता था, इससे वो बड़ा लक्ष्य डरावना नहीं लगता था।
ये बात सही है। और दूसरा सिद्धांत जिसका जिक्र बार बार आता है, वो डर को लेकर है।
हाँ, डर। जॉर्डन मानते थे कि डर ज्यादातर हमारे दिमाग की उपज है, एक वहम है,
इल्यूजन।
हाँ, इल्यूजन, जो हमें वो करने से रोकता है जो हम कर सकते हैं। वो कहते थे, हम उन चीजों से डरते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं।
और फेलियर, वो डर का हिस्सा है?
फेलियर को वो डरने की चीज नहीं, बल्कि सीखने का सबसे बड़ा टीचर मानते थे। उनका वो फेमस कोट याद है ना?
हाँ, कि मैंने 9000 शॉट मिस किए, 300 गेम हारे।
हाँ,
26 बार मुझ पर गेम जिताने का भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल होता हूँ।
कमाल है, ये तो डर और फेलियर को गले लगाने वाली बात है।
एग्जैक्टली।
तीसरा सिद्धांत आपने बताया था, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है,
ले ही मूड हो या ना हो।
जॉर्डन की वो कहानी मशहूर है ना, कि वो जिम में सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में जाते थे।
हाँ।
मैच हारने के बाद भी अगले दिन सुबह वो प्रैक्टिस में होते थे, यही कमिटमेंट है। ये रोज की छोटी छोटी ईंटें ही बड़ी दीवार बनाती हैं।
चौथा सिद्धांत है बुनियादी बातें, फंडामेंटल्स।
हाँ।
आजकल शायद इस पर कम ध्यान जाता है,
लेकिन जॉर्डन के लिए ये बहुत बहुत जरूरी था। वो फैंसी मूव से पहले बेसिक्स पर घंटों काम करते थे, ड्रिबलिंग, पासिंग, डिफेंस, फुटवर्क।
क्यों?
उनका मानना था कि प्रेशर में, जब गेम लाइन पर हो, तब आपका शरीर वही करता है जिसकी उसे आदत होती है, जिसकी हजारों बार प्रैक्टिस की हो।
अच्छा।
तो अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप मुश्किल हालात में भी टिके रहोगे। आजकल लोग शॉर्टकट चाहते हैं, पर जॉर्डन का रास्ता फंडामेंटल्स में मास्टरी का था।
पांचवा सिद्धांत, टीमवर्क। ये थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि जॉर्डन तो खुद इतने इंडिविजुअल ब्रिलियंट थे।
हाँ, लेकिन उन्होंने ये जल्दी समझ लिया था कि अकेला टैलेंट चैंपियनशिप नहीं जिता सकता। शुरुआती सालों में वो स्कोरिंग चैंपियन थे, पर टीम हार रही थी। फिर जब कोच फिल जैक्सन आए और उन्होंने वो ट्रायंगल ऑफेंस सिस्टम लाया,
जिसमें बॉल मूवमेंट और टीम पर भरोसा जरूरी था।
हाँ, तब जॉर्डन को भी बदलना पड़ा। उन्हें सीखना पड़ा कि टीम की जीत ज्यादा जरूरी है, भले ही उन्हें कम शॉट्स मिले। वो जो बाद की चैंपियनशिप्स आईं, वो इसी टीम वर्क का नतीजा थी।
और छठा आखिरी सिद्धांत, नेतृत्व, लीडरशिप।
हाँ, और उनके लिए लीडरशिप कोई पोस्ट या टाइटल नहीं थी। वो कहते थे, लीड बाय एग्जांपल।
मतलब
वो जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे, वो पहले खुद करके दिखाते थे। प्रैक्टिस में वो सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, वो अपने साथियों को चैलेंज करते थे, उन्हें बेहतर बनने के लिए पुश करते थे। लीडर वो है जो स्टैंडर्ड सेट करता है अपने काम से, बातों से नहीं।
ये छह सिद्धांत तो वाकई किसी भी फील्ड में काम आ सकते हैं। अब अगर हम जॉर्डन के सफर पे वापस आए, तो वो तीन सबसे बड़े मोड़ कौन से थे जिन्होंने उनकी कहानी बदल दी?
पहला तो, जैसा हमने कहा, बिना किसी शक के, वो हाई स्कूल टीम से निकाला जाना।
हाँ।
वो सिर्फ एक नेगेटिव घटना नहीं थी।
हाँ।
वो एक चिंगारी थी जिसने उनकी मेहनत और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड को जन्म दिया। उसने उन्हें रिजेक्शन को फ्यूल बनाना सिखाया।
दूसरा कौन सा मानेंगे? वो पिस्टन्स वाला चैलेंज।
हाँ, मेरे हिसाब से डेट्रॉइट पिस्टन्स की चुनौती पर विजय पाना दूसरा सबसे अहम मोड़ था। वो बुल्स के लिए एक दीवार की तरह थे,
जरूरी दुश्मन कहा जाता है उन्हें।
बिल्कुल, क्योंकि उनसे लगातार हारने के बाद ही जॉर्डन और पूरी टीम को ये समझ आया कि सिर्फ अकेले जॉर्डन के दम पर नहीं जीता जा सकता। उन्हें एक टीम की तरह खेलना सीखना पड़ा, फिल जैक्सन के सिस्टम पर भरोसा करना पड़ा, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से मजबूत बनना पड़ा।
और जब वो जीते उनसे,
तो वो सिर्फ एक सीरीज जीतना नहीं था, वो एक मेंटल ब्लॉक को तोड़ना था। उसके बाद ही चैंपियनशिप का रास्ता खुला। ये हार से सीखने और बदलने का बेस्ट एग्जांपल है।
और तीसरा टर्निंग पॉइंट?
तीसरा थोड़ा अलग है। वो है उनका पहला रिटायरमेंट और बेसबॉल खेलने जाना। 1993 में।
हाँ, ये तो बहुत शॉकिंग था सबके लिए, अपने पीक पर रिटायर हो जाना।
हाँ, 3 लगातार चैंपियनशिप जीतने के बाद और उनके पिता की दुखद मौत के बाद उन्होंने अचानक बास्केटबॉल छोड़ दिया और बेसबॉल खेलने लगे,
जिसमें उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली।
नहीं मिली, आलोचना भी हुई, लेकिन शायद वो दौर भी उनके लिए जरूरी था।
कैसे?
शायद उन्हें अपनी लिमिट्स का एहसास हुआ, शायद उन्हें खेल के लिए अपना प्यार फिर से महसूस हुआ एक नए नजरिए से। और जब वो वापस आए बास्केटबॉल में तो उनमें एक नई आग थी और फिर से 3 चैंपियनशिप जीती। तो कभी कभी रास्ते से हटना भी आपको कुछ सिखा जाता है।
तो ये सब सुनकर, ये सारे सिद्धांत, ये टर्निंग पॉइंट्स, एक आम इंसान अपनी जिंदगी में इनसे क्या ले सकता है? ये बातें सिर्फ सुपर एथलीट्स के लिए तो नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जिंदगी के हर एरिया में लागू होते हैं।
जैसे करियर में?
हाँ, करियर में देखिए, कोई बड़ा गोल है, मान लीजिए प्रमोशन, उसे छोटे स्टेप्स में तोड़िए। कौन सी नई स्किल सीखनी है, कौन सा छोटा प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो उसे पर्सनल फेलियर मत मानिए, उसे डेटा की तरह देखिए। क्या गलत हुआ, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। लीडरशिप सिर्फ टाइटल से नहीं आती, अपने काम से, अपने एटीट्यूड से आती है।
और पर्सनल ग्रोथ में कोई नई स्किल सीखनी हो?
बिल्कुल, मान लीजिए कोई नई भाषा सीख रहे हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शुरू में गलतियां होंगी, आवाज अच्छी नहीं लगेगी।
हाँ,
उसे प्रोसेस का हिस्सा मानिए, डरिए मत, बेसिक्स पर फोकस कीजिए, परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कीजिए, रोज थोड़ा कीजिए, कोशिश न करना ही फेलियर है।
हेल्थ गोल्स के लिए भी ये सही बैठता है, जैसे वजन कम करना हो?
निश्चित रूप से, मैराथन दौड़ना है, ये पहले दिन बहुत बड़ा लगेगा।
हाँ,
लेकिन पहला कदम शायद सिर्फ 10 मिनट वॉक हो, फिर 15 मिनट जॉगिंग, हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ने का हौसला देगी। लक्ष्य बड़ा है सोचकर कोशिश ही ना करना, ये जॉर्डन के फलसफे के खिलाफ है।
और शायद सबसे गहरा सबक वो मेंटल लेवल पर है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं।
हाँ, वो सबसे जरूरी है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी कोशिश ही आपकी असली जीत है, तब नतीजों का डर कम हो जाता है।
अच्छा,
आप फेलियर को एक इन्फॉर्मेशन की तरह देखते हैं, पर्सनल अटैक की तरह नहीं। इससे एंग्जाइटी कम होती है, आप नए आइडियाज ट्राई करने से, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरते नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप घिरे भी तो आपने कोशिश की और आप उठ के फिर कोशिश कर सकते हैं, ये एक तरह की मेंटल फ्रीडम है।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए, अगर 3 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो, एक इमोशनल लेवल पर, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर और एक यूनिवर्सल लेवल पर, तो वो क्या होंगे?
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, इन इमोशनल इनसाइट, वो है असफलता को देखने का नजरिया बदलने से जो आजादी मिलती है। यह समझना कि फेल होना ठीक है, यह प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन ट्राई ना करना वो अस्वीकार्य है, ये सोच डर पर काबू पाने और खुलकर जीने की हिम्मत देती है।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, एन इंटेलेक्चुअल इनसाइट, वो ये है कि एक्सीलेंस या महानता कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, ये बनती है बेसिक्स पर पकड़ से, छोटे छोटे गोल्स को चेज करने से, लगातार तैयारी से और कमिटमेंट से। सफलता लक नहीं, बल्कि तैयारी और मेहनत का नतीजा है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, अ यूनिवर्सल इनसाइट, वो ये कि ये चैंपियन माइंडसेट किसी खास इंसान के लिए रिजर्व नहीं है, इसे कोई भी कहीं भी डेवलप कर सकता है।
कैसे?
उन चीजों पर फोकस करके जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा एफर्ट, हमारा एटीट्यूड, हमारी तैयारी, फेलियर से सीखकर और अपने काम से लीड करके। ये सिद्धांत सबके लिए हैं, हर उस इंसान के लिए जो खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहता है।
तो जॉर्डन की तरह कोशिश न करना, अस्वीकार मानने का मतलब शायद ये नहीं कि हम हर चीज में हर वक्त पागलों की तरह लगे रहें, बल्कि ये चुनना कि कौन सी कोशिशें हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं और फिर उन पर अपना सब कुछ झोंक देना। शायद यही सवाल है सोचने के लिए।
रिकॉर्डेड आवाज, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।
संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है।